وجعل لي وزيرا من اهلي, اور میرا مددگار, میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے میرے لیے میرے بھائی کو, ہارون اخی, ہارون کو, اخشدد بہ ازری, جس کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دے. انسان انسان ہے, ہاں پیغمبر ہو لیکن وہ انسان ہوتے ہیں, اور انسان کو انسان ہونے کے ناطے مددگاروں کی ضرورت رہتی ہے, مددگار کی ضرورت رہتی ہے. اور ایک اکیلا 211 کے قانون کے تحت انسان کو ایک سہارا, ایک سپورٹ مل جاتی ہے. اسی لیے کیا کہا گیا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایمان اور نیک عمل میں تنہا قدم مشکل ہوتے ہیں اور خسارے سے نہیں بچ سکتا انسان, نیکی کی طرف آ نہیں سکتا جب تک وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر نہ ہو. ایک دوسرے کو حق کی تلقین, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. اچھا آپ دیکھیے, اس سے موسیٰ علیہ السلام کے دل کی وسعت بھی پتہ چلتی ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں, اپنے تک مخصوص کر لیتے ہیں, اس کو نہ پتا چلے, کہیں یہ بھی نہ حاصل کر لیں, ہے نا. جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے, کوئی اچھی چیز ملتی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو اس میں شریک کرتے ہیں. یہ دل کا بخل ہوتا ہے. یعنی بعض لوگ, ہو سکتا آپ میں سے ہی اس بات سے گھبراتے ہوں کہ آپ کی کوئی کلاس فیلو آپ سے سوال کرے, کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے پھر میرا پوائنٹ اس کو پتا چل جائے گا, یہ اپنے پرچے میں لکھ لے گی, اس کو جواب کے نمبر مل جائیں گے. میں بھی کہیں شیطان دل میں خیال ڈالتا, ہو سکتا ہے آپ شیطان کے حملے سے بہت محفوظ ہوں, بہت خوش قسمت اگر محفوظ ہوں, لیکن شیطان یہاں سے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات کی, من سئل علما فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من النار, جس سے علم کا کوئی سوال کیا گیا اور جس کو وہ جانتا تھا تو اس نے کیا کیا, اس کو چھپا لیا, نہیں بتایا دوسرے کو, اس کو بھی پتا چل گیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائیں گے. اچھا, اور بنی اسرائیل پہ کیوں لعنت کی گئی کہ علم چھپاتے تھے, یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کوئی پوچھے تو اسے بتانا نہ, اور دوسروں کو بتانے میں بخل کرنا, اور نعمت میں دوسروں کو شریک نہ کرنا, یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چنے جانے میں کہ اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے, نبی بنا رہا ہے ان کو, اور پہلے ان کو, حالانکہ یہ حضرت ہارون سے چھوٹے تھے. یہ یاد رکھیے آپ بات, حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے عمر میں چھوٹے تھے, لیکن ان کو نبوت مل رہی ہے, ان کو اللہ نے چن لیا, تو کوئی خوبی ہوگی نا, حالانکہ ان سے قصور بھی ہوا تھا, وہ قتل ہو گیا تھا, فتنہ چل لیا اللہ نے. کیوں, دل کی وسعت. جب ان کو نبوت ملی, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی دے دیجیے, کتنی بڑی بات ہے. اشرک فی امری, میرے کام میں ان کو بھی شریک کر دیجیے. کیا ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہی چاہتے ہیں, دیورانی جٹھانی کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو خیر خوبی ہم کو ملی ان کو بھی مل جائے, ان کا بھی بھلا ہو جائے, ان تک بھی پہنچ جائے. اشرک خوفی امری, ہم کہتے نہیں پھر ہمیں کون پوچھے گا, اگر ان کو بھی مل گئی تو ہماری طور کیسے بنے گی, کہیں وہ نہ آگے نکل جائیں. تو شیطان کے اس وار سے بچیے, ہوشیار رہیے. اشرک خوفی امری, اور آپ دیکھیے کہ وہ اس کا کتنا مثبت پہلو دیکھتے ہیں, نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا, تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ اور ذکر کریں تیرا بہت زیادہ, یعنی ہم مل کے کام کریں گے اور مل کے کام کرنے میں آسانی ہوگی, لطف آئے گا. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, اب اس کا معنی کیا ہے کہ ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ اور ذکر کریں بہت زیادہ؟ تسبیح بھی ایک طرح سے ذکر ہوتا ہے اور ذکر تسبیح ہی ہوتی ہے, دونوں سے ملتے جلتے ہیں, پھر الگ الگ کیوں کہا گیا اور دونوں میں کثیرا کیوں کہا گیا؟ صرف تسبیح اور صرف ذکر نہیں بلکہ کثیرا ہے. اس کا ایک سو لفظی معنی ہے ایز اٹ از, کہ ہم مل کے تیری تسبیح کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ تسبیح کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اکٹھی ہوں, جیسے باجماعت نماز ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کبھی اکیلے میں خشوع نہ ہو تو کسی اچھے خشوع والے انسان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے خشوع میں فرق پڑ جائے گا. میں نے تو اس کا بہت تجربہ کیا, میری ایک دوست تھی اور بہت اچھی نماز پڑھتی تھی, بہت اچھی, تو اکثر میں اسے ریکویسٹ کرتی تھی کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ اس کے توفیل مجھے بھی توفیق ہو جائے گی اچھی نماز. میں حرص رکھتی تھی کہ میں اس کے ساتھ پڑھوں, چاہے ہم الگ الگ بھی پڑھ دیں, سنت پڑھے نقل پڑھے, لیکن ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز میں اتنی یکسوئی اور اتنا انہماک ہوتا تھا کہ مجھے مجبور ہونا پڑتا تھا انہماک میں, خود بخود مجبور ہو جاتی تھی میں کہ میں بھی انہماک رکھوں. اور اس سے میں نے سیکھا, اور یہ وہ میری دوست تھی کہ ایک دفعہ میں کہیں درس دے رہی تھی تو ایسے ہی باہر سے گزری, گاڑیاں شاڑیاں کھڑی تھی تو کہنے لگی یہاں کیا ہو رہا ہے اندر, تو لوگوں نے بتایا یہاں درس ہوتا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو دوپٹہ نہیں ہے تو میں اندر جا سکتی ہوں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ لے لیجئے کوئی کپڑا سا تو یہ رکھ لیجئے اور بیٹھ جائیے. ویسے وہ کہتی کچھ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ ہو رہا ہوا ہے کہ نہیں ہو رہا ہوا, آپ چلی جائیں اندر. وہ آ کے بیٹھ گئی, بس پہلی دفعہ یہ آنا تھا, اللہ نے اتنا کرم کیا کہ وہ میری بہت سی ہدایت کا سبب بن گئی. تو کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور یہ جو باہر جا رہے ہیں جن کو ابھی دین کا کچھ پتہ نہیں, ان میں تو کوئی خیر نہیں, نہیں کچھ پتہ نہیں کہ جس کو آپ سکھا رہے ہیں وہ آپ کو کتنا سکھانے کا کام دے. بہت کچھ میں نے سیکھا اس کی صحبت میں, اور میں نے اس کی صحبت میں کیا سیکھا, اس لیے کہ اس کے اپنے سوال پھر اتنے ہوتے تھے, کیونکہ اس کے اندر ایک تڑپ تھی نا, ایک شوق اپنے اندر تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی دکھائی تو جسے پورا روشن ہو جاتا ہے انسان. تو کئی نسبح کا کثیرا, اچھا پھر کیا, ونذکر کا کثیرا, اور تیرا ذکر کریں ہم بہت زیادہ. اچھا ایک ذکر ہوتا ہے نا, ایک تسبیح ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے جو آپ خود تسبیح لے کے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کسی دوسرے سے کرتے ہیں, اللہ کی کسی خوبی پر, کسی صفت پر, کسی نعمت پر مل کے کرتے ہیں. اچھا ایک وہ قرآن تھا نا جو ہم یہاں آنے سے پہلے اپنے اپنے گھر میں الگ الگ پڑھتے تھے نا, کیا وہ ذکر نہ تھا؟ ذکر تھا نا, اللہ ہی کا ذکر تھا وہ بھی, لیکن جب سے ہم اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو فرق ہے نا. کیا فرق؟ سب ایک دوسرے سے انرجی لیتے ہیں, سب ایک دوسرے سے طاقت اور قوت حاصل کرتے ہیں, ایک دوسرے کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, بات زیادہ سمجھ میں آتی, اور جب لائک مائنڈیڈ لوگ مل جائیں تو بات ہی بدل جاتی ہے, لطف کچھ اور ہو جاتا ہے کسی بھی مجلس کا. اور پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں چھ چھ گھنٹے گزارنے کی وجہ سے اب جب آپ کسی اور مجلس میں ہوتے ہیں تو دل ہی نہیں لگتا. آپ کیا دل چاہتا ہے کہ بس وہ کوئی اپنا نظر آ جائے نا تو کچھ ہی بات تھوڑی سی کر لیں, اور پھر جب آپ بات کر کے کبھی غور کیا کریں کہ الحمدللہ نہ کوئی غیبت ہوئی, نہ کسی کا مذاق ہوا, نہ کسی کی کوئی برائی ہوئی, اچھی ہی بات ہوئی, سیکھا ہی یا سکھایا ہی. جیسے حضور کا فرمان ہے نا کہ کل عالمن او متعلمن, या सीखने वाले बनो या सिखाने वाले बनो। अच्छा तुमर के बारे में आपको बताया, हर एक से सीखते थे, बकरियां चलाने वाले से भी पूछते थे सवाल, यानी उस इल्म को भी सीखते थे, हर तरह का इल्म। तो कई मुसब्बिहा का कसीरा मुनस्कुरा का कसीरा एक तो इस माने में है कि हम मिल के इकट्ठे बैठ के तेरी तस्बीह करें और तेरा जिक्र करें। जिक्र में यहाँ मुराद ये नहीं है कि जैसे आमतौर पर लोग इकट्ठे बैठ के जोर जोर से कुछ लफ्ज पुकारते हैं, ये नहीं है इससे मुराद कि हम दोनों बैठ के जोर जोर से हक हू करें। इससे मुराद क्या है कि तेरी बात करें, तुझे याद करें और तेरी तस्बीह करें, तेरी पाकी बयान करें। तस्बीह क्या होता है? पाकी बयान करना, यानी अल्लाह ताला की सिफात का इजहार करना। मुसब्बिहा कहा है ना, ये नहीं कहा मुसब्बिहो हम तस्बीह करें, ये भी नहीं कहा नज़्करो हम जिक्र करें। क्या कहा? मुसब्बिहा क्या तेरी पाकी बयान करें। इसका मतलब क्या है कि तेरी सिफात और तेरी उम्दा खूबियां बयान करें, तेरा जिक्र करें, तुझे याद करें, तेरी बातें करें, हम तेरी बातें करें। नज़्कर का अगर आप आम मफहूम में बात समझना चाहें तो हम मिलकर तेरी बात करें, क्योंकि जब आपके दिल में किसी की मोहब्बत होती है तो फिर आपका दिल क्या चाहता है कि कोई ऐसा मिले जिससे मैं उसकी बात कर सकूं, क्योंकि उससे भी चैन आता है ना इंसान को। अच्छा दूसरा माना मुसब्बिहा का कसीरन व नज़्करा का कसीरन, किस काम के लिए भाई मांगा था शरीक? तबलीग के काम के लिए, कि हम तेरा जिक्र लोगों के सामने बयान करें, तेरी बात यानी तेरी तस्बीह हम मिलकर लोगों के सामने बयान करें, यानी दोनों ही तबलीग का काम करें। और फिर उसके आगे जो भी तकाजे हैं दीन के वो भी पूरे करें, तेरे दीन को दुनिया तक पहुंचाएं। इन्नका कुंता बिना बसीरा, यकीनन तू हमको देखने वाला है, तू हमें देख रहा है। अब देखें कि जब आप अल्लाह को याद कर रहे होते हैं ना, अल्लाह की बात कर रहे थे, तो किसी को ना पता चले, भले ना चले और ना ही चले तो अच्छा है, इल्ला ये कि कोई उससे फायदा ही उठाए। लेकिन ये चीज इंसान को कितनी खुशी और कितना सुकून देती है ना कि मेरा रब तो देख रहा है, उसको तो पता चल रहा है कि मैं उसको याद कर रहा हूँ। अब देखिए जब आप किसी इंसान को याद करते हैं तो बाद में उसको नहीं पता चलता कि आप उसको याद कर रहे हैं, लेकिन जब आप अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं, अल्लाह की बात कर रहे थे, तो वो सुन रहा होता है बीच में। अच्छा आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप किसी की बात कर रहे थे बड़े अच्छे मानों में, किसी की तारीफ कर रहे थे आप बैठ के किसी और के साथ, कि इतने में पीछे से वो शख्स आ गया जिसकी तारीफ हो रही थी, कैसा लगता है इस वक्त आपको? मजा आ जाता ना, कितने शुक्र है उसको मेरे दिल के जज्बात पता चले कि मैं उसके बारे में बहुत अच्छी राय रखती हूँ। लेकिन आमतौर पर तो ये चांस कम होता है, दूसरा ज्यादा होता है। अच्छा चलिए जो भी होता है, अब आप देखिए कि ये जो इसके फौरन बाद आया ना, इन्नका कुंता बिना बसीरा, आप हमको देख रहे होते हैं। जब हम आपकी बातें करते हैं ना, आप सुन रहे होते हैं। जब हम आपकी तस्वीर करते हैं तो आप हमें देख रहे होते हैं, और हमेशा आप हमारे काम पे निगरान रहे हैं, आप हमको पहले भी देखते रहे। قَالَقَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى, कितना ग्रैंड अंदाज है, قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى, दुआ कबूल करके अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मूसा जो तूने मांगा दे दिया गया, तेरी मुराद पूरी कर दी गई, तेरी तमन्ना सुलका सुन, ऐसी हाजत, लफ्जी माना क्या है, ऐसी चीज जिसकी तबीयत को हिर्स हो, ये जो बहुत दिल चाहता हो। एक होता सवाल, सवाल करना, जिसे हम कहते सवाल करना, अरबी में सवाल होता है, और एक है सुअल। सुअल क्या है? ऐसी हाजत, ऐसी जरूरत जिसकी तबीयत को हिर्स हो। अच्छा, सवाल किस चीज का करते हैं आप जिसकी आपको जरूरत हो? कोई चीज कब मांगते हैं जिसकी आपको जरूरत हो? लेकिन सुअल जिसकी हिर्स हो, सिर्फ जरूरत नहीं, हिर्स, शदीद तमन्ना। लकद ऊती तस्सुअलक मूसा, मूसा जो तेरे दिल में हिर्स थी ना, शद तमन्ना थी ना, शदीद ख्वाहिश थी, वो हमने पूरी कर दी। ये सुअल जो है उम्मिया के करीब है, लेकिन उम्मिया तमन्ना के लिए होता है, और सुअल जो मांगी भी जा चुकी हो चीज। उमनिया तमन्ना के लिए आता, अमानी पीछे गुजर चुका है, और ये उमनिया से बाद में होता है। तमन्ना तो तमन्ना है ना, आपने मांगी नहीं किसी से अभी, आपके दिल में ही है तमन्ना। लेकिन सुअल क्या है? जब मांग बैठे आप, समझ गए फर्क है? ये भी तमन्ना, लेकिन आप मांग चुके। इधर परेशान आपको इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इस बात से लुत्फ उठाए। लकद ऊती तस्सुअल या मूसा, अगर आप सुअल का माना नहीं समझते, आप लुत्फ नहीं उठा सकते इस बात का। कद ऊती तस्सुअल या मूसा, मूसा तेरी तमन्ना पूरी कर दी गई। और ये सारी तमन्ना ना रब्बी शराहली सदरी से आखिर तक। वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया, एक और बार भी हमने तुझ पर एहसान किया था। यानी मूसा, ये पहली बार नहीं कि आपकी बात पूरी हो रही है, पहले भी हमने आप पर एहसान किया है। कब की बात है वो? इज औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब वही की हमने तेरी माँ की तरफ जो वही की जाती है, या जैसे वही की जाती। इसीलिए बाद उलमा का ख्याल है कि उम्मे मूसा भी नबी थी हजरत मरियम के अलावा। ये तफसीर कुर्तुबी में ये बहस आई है, और जरूरी नहीं आप इससे एग्री करें, लेकिन लफ्ज की वजह से एक ओपिनियन आपको दोबारा बता दिया। इज औहैना इला उम्मिका, सिर्फ इतना नहीं कहा गया कि जब हमने तेरी माँ की तरफ वही की थी, बल्कि क्या कहा गया? मा यूहा, जैसे वही की जाती। तो बाद लोगों ने इसको वही के इस्तिलाही माने में लिया है। क्या वही की थी? अनकजीफी। इकजीफी जो है असल में था काफ दाल से, इसका रूप कजा का माना होता है डालना, और इकजिफ क्या था? कजा यकजिफ से इकजिफ अमर डालो, और इकजीफी मोनस के लिए दाल औरत डाल दे। ही का क्या मतलब है? उसको, कौन? मूसा अलैहि सलाम। अने कुजीफी ही। अच्छा, ये मैंने इसलिए वजाहत की कि कहीं आप यूं ना समझे कि ये लफ्ज है अने कुजी और फी ही अलग, उसमें का तर्जुमा करना शुरू कर दे। अने कुजीफी ही, इसको डाल दे। फिर ताबूत ही, ताबूत में। ताबूत आमतौर पर लकड़ी के बॉक्स को कहा जाता है, वो भी होता है, टोकरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, बॉक्स के लिए। फकजिफी ही, फिर डाल दे उसको। ये दूसरी ही कदर को जा रही है ताबूत की तरफ। बच्चे को ताबूत में डाल दे, ताबूत को फिलियम में, दरिया में डाल दे। और दरिया क्या करे? फलियल फिलियम बिसाहिल, दरिया को बच्चा साहिल पे डाल देना चाहिए। लफ्जी माना ये फल युलते ही, ये कौन सा अमर है? गायब कर। साहिल उर्दू के अलावा अरबी में भी इस्तेमाल होता है उसी माने में, साहिल पानी का किनारा। या खुद अदुबुल्लाह, ले लेगा उसको मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन। किसकी तरफ इशारा है? फिरौन की तरफ। अल्लाह की कुदरत देखी, कुदरत है ना अल्लाह की, पूरी ताकत, हिकमत और बड़े बड़ों की बेबसी, अपने दुश्मन को पालने लगा है। और अल्लाह ताला अपना काम किससे ले रहा, अपने दुश्मन से निकलवा रहा है। ये है ना अल्लाह ताला, इंसान कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपना काम अपने दुश्मन से निकलवाए। कोई दुश्मन किसी का काम करके नहीं दे सकता। ये अल्लाह ताला की ताकत पर दलील है कि जिससे चाहे अपना काम ले, या खुद हो ले ले उसको, किसके लिए, परवरिश के लिए। कौन, अदुवुल्ली व अदुवुल्ला, मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन, इसको पाले। व अल्कैतु अलैका मुहब्बतन मिन्नी, और मैंने डाल दी तुझ पर मोहब्बत अपनी तरफ से, तेरे चेहरे पे ऐसी मोहब्बत डाली थी कि जो देखे देखता ही रह जाए, ये मैंने डाली थी। अलकैतु, मैंने डाली, अलैका तेरे ऊपर यानी तेरी शक्ल पर, क्या डाल दी, मोहब्बत। ये वही लफ्ज है जो हम मोहब्बत कहते हैं उर्दू में। मिन्नी, मेरी तरफ से, यानी आम लोगों के दिल में और फिरौन के दिल में भी डाल दी। आपने देखा होगा कि बाज बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो आपके अपने ना भी हो। क्या चीज होती है, सबकी गोश्त पोस्ट हड्डियां खून बराबर है। अगर आप उनके जिस्म की केमिस्ट्री को देखें या उनके बाकी चीजों को, तो वो तो सब एक ही चीज है। आंखें भी, नाक भी, वही मटेरियल होता है सबका जिससे बनते, तो फिर फर्क क्यों पड़ जाता है, बंदे बंदे में फर्क क्यों हो जाता है। यानी दो इंसान जिनकी शक्लें भी मिलती होती है बाज़ोकार, लेकिन दोनों के लिए आपकी फीलिंग डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के अंदर कशिश ज्यादा होती है, कुछ फीके होते हैं। तो ये जो कशिश का होना है और मोहब्बत के लायक होना, ये भी अल्लाह का एक इनाम होता है। और जो अल्लाह दिलों में डालता है, इस पर किसी को मगरूर होने का या तकब्बुर करने का कोई हक हासिल नहीं। आमतौर पर ऐसा था ना, जिन बच्चों से लोग बहुत प्यार में, स्पॉइल हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं। क्यों, शैतान उनके दिल में डाल देता है तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। इसी तरह बाज बड़ों के दिल में भी ऐसी बातें आने लगती कि अगर दो चार लोग उनको चाहने लगे तो वो खुद को बड़ी चीज समझने लगते हैं, तकब्बुर में पड़ जाते हैं। और पीछे आपने सूरत मरियम में पढ़ा था ना, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। अगर कभी जिंदगी में ये मोहब्बत नसीब हो अल्लाह के दीन की वजह से, तो उसको अल्लाह का इनाम समझे, उसे कभी भी अपना कमाल ना समझे, कभी तकब्बुर ना करे उस पर, कभी बेजारी ना करे उस पर, उस शुक्र अदा करे। क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। वह अलकई तो अलई का मोहब्बत मिलनी, जिससे अल्लाह कोई काम लेना चाहता और जिसकी हिफाजत करना चाहता, उसके आसपास ऐसे असरात पैदा कर देता है कि खुद बखुद लोग उसकी तरफ माइल होते चले जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने वो जो घर बनाया था ना अल्लाह का, उसके लिए दुआ की थी। और है ना काबों में अट्रैक्शन, कितनी अट्रैक्शन है, कितना दिल खींचता उसकी तरफ। हालांकि अगर कभी मैं जाके सामने बैठती हूँ ना काबा के, जब भी अल्लाह नसीब करे तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये क्या है ना, चार दीवारी है, चार दीवारें ही जुड़ी हुई और उन पर एक छत है और उस पर कपड़ा डाला हुआ। और कभी मैं करीब से गुजरती हूँ, देखती हूँ पत्थर ही है ना, कुछ और तो नहीं, फिर क्या है यहाँ जो किसी और पत्थर में नहीं, जो ताजमहल आगरा में नहीं, यहाँ क्यों है। और दुनिया का सिंपलेस्ट घर, उससे ज्यादा सिंपल कोई जगह हो ही नहीं सकती। उस पर कपड़ा डाला होना तो एक अलग बात है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर और उसकी जो बिल्ट है और उसका जो पत्थर है और उसकी ईच एंड एवरीथिंग सिंपलेस्ट, क्या अट्रैक्शन है इस चीज की, सबके दिल खींचे जाते हैं। जहाँ कहीं नजर आ जाए एक दफा देखे फिर एक दफा और जरूर देखते हैं। तो फिर मैं तो ऐसा करती हूँ, आपका नहीं मालूम, कहीं तस्वीर भी नजर आ जाए ना तो दोबारा जरूर देखते हैं। और जब कभी मैं वापस आती हूँ ना वहां से तो एक खास हिस्से को नजर में बिठा के आती, लास्ट लास्ट होती आखिरी नजर, फिर सारा रास्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आखिरी नजर, एक खास पोर्शन। क्या है, इतनी दुनिया में चीजें हैं, वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई हैं, लेकिन उसको क्यों याद कर रहे हैं पलट पलट के। अल्लाह का घर है ना, अल्लाह के दोस्त ने बनाया, तो कुछ चीजों के अंदर अल्लाह अट्रैक्शन डाल देता है। तो वैसे दुआ करनी चाहिए अल्लाह खैर में हमारे लिए अट्रैक्शन पैदा कर, वरना शर में अट्रैक्शन का हो जाना फितना है, इंसान के लिए मुसीबत है। अल्लाह के लिए की जाने वाली मोहब्बत में तो अजर है, और अगर यही दिल किसी नाजायज चीज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, हराम चीज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, तो आजमाइश और हर हर लम्हा गुनाह। वो अलकई तो अरे का मोहब्बत मिन्नी ओले तुस्ना आया आई नी, और ताकि तू पाला जाए मेरी निगाहों के सामने, मेरे सामने। आपको मालूम है ना कि इससे पहले फिरौन क्या कर रहा था, बैकग्राउंड तो आपको मालूम है। मिस्र का इलाका असल मिस्रियों का था, जमीन कब्तियों की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में इसराइली भी वहां पहुंच गए और इनकी काफी नस्ल बढ़ गई, सैकड़ों में हो गए, हजारों में। अब मिस्र में एक तो वहां के नेटिव थे और एक क्या थे, माइग्रेटेड से, ये दो कौमें थी वहां। इब्तदा में तो इनकी हालत बड़ी अच्छी रही मिस्र में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन पे जवाल आया अमली तौर पर भी, और मिस्रियों ने इनको पलट के अपना गुलाम बना लिया। इनसे अपनी खिदमत लेते थे, इनसे मजदूरियां करवाते, और इनका हाल बड़ा बुरा था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा इनकी निजात के लिए। उनके जिम्मे दो काम थे, एक था फिरौन की हिदायत और दूसरा क्या था, बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म सितम से निकालना। फिरौन ने क्या जुल्म किया था खास तौर पर, कि उसने इसराइलियों से, बनी इसराइल से छुटकारा पाने के लिए एक तदबीर सोची। तदबीर यह थी कि इनके बच्चों को मार के इनकी नस्ल सफाया कर दो, इनकी औरतें कब्तियों के हवाले करो, ताकि किसकी नस्ल बढ़ जाए, सारी की सारी खत्म कर दो बनी इसराइल को, और नस्ल खुशी के लिए वो इनके बेटों को मरवा देते। और उसके लिए पहले उसने क्या किया, एक साल नहीं मरवाता था और एक साल मरवाता था, सैकड़ों बच्चे मार दिए गए। अच्छा बास कहते हैं कि वो उसने ख्वाब देखी थी या नजूमियों ने उसको बताया, मालूम नहीं इसमें क्या सच्चाई क्या नहीं, लेकिन अगर ये सच्चाई होगी इस पेशन गोई में कोई, तो जिसकी खातिर सैकड़ों बच्चे मारे गए थे वो खुद उसके अपने घर पहुंच गया। अच्छा हारून अलैहिस्सलाम के लिए ये नहीं हुआ वाकई, क्योंकि कहते हैं कि उनकी विलादत उस साल में हुई जिसमें बच्चे नहीं मारे जाते, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत उस साल में हुई जो बच्चे मारने का साल था, और हारून अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे, बड़े थे इनसे। बहरहाल अल्लाह ताला ने क्या किया, फरमाया वली तुस्ना अला आईनी, मेरी निगरानी में तू पाला जाए, तेरी परवरिश की जाए,